देखते ही हम सभी फिर कर रहे हैं कि हम सब मधुबन निवासी बन चुके हैं और हम मधुबन में बैठकर आपसे बातें कर रहे हैं। इसलिए हम सबके बीच आपने अपना अमूल्य समय दिया और आज हम सबको सन्मुख में बहुत सारे ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कराएंगे। इसलिए सभी ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं और यहाँ सन्मुख बैठे हुए सारे अमरावती जिले की तरफ से आपका गुलदस्ते से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं।
थैंक यू
थैंक यू दीदी जी। आज भले ही हम यहाँ अमरावती में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह अमृत वेले से ही हमें यही आभास हो रहा है कि आप यही हैं और हम आपके सामने समक्ष बैठ के आपको सुन रहे हैं। आज आदरणीय भाई जी, कल जो बाबा के अव्यक्त महावाक्य सभी ने सुने हैं, उन महावाक्यों पे कुछ भाई जी अपना चिंतन सुनाएंगे और उसके बाद में सभी परिवार की तरफ से जो क्वेश्चंस आए हैं भाई जी के लिए, प्रश्न बहुत सारे आए हैं। प्रश्न तो वैसे बहुत आए हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम कुछ प्रश्न जो हैं भाई जी से पूछेंगे और उसके फिर भाई जी उसके ऊपर स्पष्टीकरण देंगे। ओम शांति। मैं पुनः भाई जी से विनती करता हूँ कि वो अपने आशीर्वचन शुरू करें।
ओम शांति। पहली बात कल की मुरली में नशा चढ़ाने वाली, सदा के लिए सबको नशा चढ़ जाए। बाप अपने छोटे परिवार को देख रहे हैं जो सब राजे हैं। देखो कितनी खुशी की बात है कि हम सभी भगवान के परिवार के मेंबर हैं। अब हमारा हेड स्वयं भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा माँ जगदम्बा, तीनों ही सबसे बड़े हाईएस्ट अथॉरिटी। तो हम भगवान के परिवार के मेंबर बन गए हैं, इस खुशी में हमें बहुत रहना है। बाबा ने स्वमान की और हमारे पांचों स्वरूपों की याद दिलाई। फरिश्ता छोड़ दिया था बाबा ने, लेकिन वो भी है और साथ में ज्वाला स्वरूप योग, ज्वालामुखी योग, अर्थात वो योग जिससे हमारे विकर्म विनाश हो जाएं, संस्कार बदल जाएं, पुराने संस्कार जलकर नष्ट हो जाएं, ऐसा पावरफुल योग हमें करना है। संसार को भी हमारी मदद की बहुत जरूरत है, अब तो ज्यादा पड़ती जा रही है, तो हमें संसार को मदद देने वाला योग भी करना है। हम अपने योग को ऐसा ही टर्न कर दें कि हमारे वाइब्रेशन संसार में पहुंचने लगे। सवेरे भी हमने थोड़ा उसी ढंग से कराया, कल भी कराया था। स्वमान एक बहुत बड़ी चीज है और बाबा ने जो हमें पांचों स्वरूप की स्मृति दिलाई वो बहुत अनुपम बात है। संसार में आज तक मनुष्यों ने वेद पढ़े, दर्शन, उपनिषद, गीता, 18 पुराण हैं, वेदांत और बहुत सारे ग्रंथ हैं। पवित्र बनना फिर भी सन्यासियों को भी कठिन भासता रहा, कारण किसी ने मूल स्वरूप की याद नहीं दिलाई। पवित्र रहना है, जबरदस्ती रहना है, लेकिन उसको नेचुरल बना दिया जाए। पवित्रता हमारे जीवन का परम आनंद बन जाए। ये तब हुआ जब हम श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित हो गए। तो पहली स्मृति अनादि आत्मा। आत्मा परम पवित्र है, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर है। अपने से बात करो, मेरे साथ साथ, मैं आत्मा मूल रूप से भी संपूर्ण पवित्र थी, अब ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। मेरे पास संपूर्ण शांति है, ये भाषा आप यूज करेंगे, अफर्मेशन है ये। जो चीज हम अपने को स्वीकार करा देते हैं वही हमारा जीवन बन जाता है। इस सिद्धांत पे आप ध्यान देंगे, मुझे पवित्र बनना है, भारी लगेगा काम, लेकिन मैं हूं ही परम पवित्र आत्मा। मुझे बहुत शक्तिशाली बनना है, कब बनेंगे, 100 साल लगेंगे, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। ये अगर हमें स्मृति रहने लगे तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। आदि स्वरूप की बाबा ने याद दिलाई, ले चले वहां हमें, हमें रोज यही अभ्यास करने हैं। अपने जो ये पांचों स्वरूप हैं, इन्हें अपने सामने देखना है, ये मैं हूं। बुद्धि के तीसरे नेत्र से हम अपना चित्र बनाएंगे, ये मैं हूं, देव स्वरूप। प्रकृति का कितना सौंदर्य होगा, प्रकृति कितनी सतो प्रधान होगी, सुखदायी होगी, हमारी सेवा में होगी, सोने के महल हीरे जड़ित होंगे, अथाह धन संपदा सबके पास, जैसे आजकल कारें होने लगी सबके पास, पुष्पक विमान होंगे। तो आप सभी भाई बहने, बड़ा अच्छा लग रहा आपको, देखा भी खोला है उन्होंने, अनम्यूट किया है, आप सभी ये जो हमारे पांचों स्वरूप हैं, इनमें स्वमान हैं बहुत सारे, इनका बहुत अच्छा अभ्यास किया करें। स्वमान बहुत ही बड़ी चीज है, इसको जिसने समझ लिया उसको भी बहुत फायदा होता है, और जो इसका अभ्यास करेंगे उनको तो और ज्यादा फायदा होगा। स्वमान को समझना भी एक गुह्य ज्ञान है। कई लोग केवल इसको रटते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन बात रटने की नहीं है, स्वीकार करना। देखो जिसको हम स्थिति कहते हैं, बाबा भी जो कह रहे थे, स्मृति स्वरूप बनना। सवेरे बाबा ने चक्कर लगाया तो देखा स्मृतियों में तो रहते हैं, लेकिन उसका स्वरूप बनना, उसमें मग्न होना, ये नहीं हो पाता है। तो इसका आधार होता है स्वीकार करना। एक एक चीज को हम स्वीकार करेंगे, जैसे मैं एक महान आत्मा हूं, अभी ये कहने से तो कुछ नहीं होगा, कहेंगे तो लगेगा ये तो अभिमान हो गया मुझे, लेकिन हम इसे स्वीकार करें, हम भगवान के बच्चे, संसार में बहुत महान हैं। स्वीकार करेंगे तो नम्रता आ जाएगी। महान व्यक्तियों के विचार महान होते हैं, विचार महान होने लगेंगे, उनके बोल महान होते हैं, बोल महान होने लगेंगे। तो एक एक स्वमान को स्वीकार करते चलें। स्वमानों की आप लिस्ट बना लें अपने लिए, थोड़ी लंबी चौड़ी नहीं बनानी होती, हमें अभ्यास में थोड़ा सा ये बात जाननी चाहिए। 5 स्वमान ले लें आप कोई भी, और उनको अपनी फीलिंग में लाएं, कर्म योगी बनाएं अपने को। बाबा ने कल बहुत अच्छी बात कही, तुम कोई 2-4 घंटे के योगी नहीं हो, योगी जीवन है तुम्हारा, योगी जीवन, समझना इस बात को। सदा कुछ ना कुछ स्मृति अंदर बनी रहे और हम उसका स्वरूप बनते चलें। जैसे मैं एक महान आत्मा हूं तो ये बस आ जाए जीवन में, महानताएं आ जाए जीवन में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो हम शक्तिशाली बन जाएं, ये होगा हमारा योगयुक्त जीवन। हमारे विचार पवित्र हो जाएं, हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए, संस्कार अच्छे हो जाएं, ये हम करते चलेंगे, इसको कहेंगे योगी जीवन। ये जीवन हमारा सरल जीवन हो जाएगा। योगी जीवन माना सरल जीवन, नम्रता से भरा हुआ जीवन, सर्वात्माओं के लिए प्रेम और सुभावनाओं से भरा हुआ जीवन, ऐसा जीवन योगयुक्त जीवन है। इसकी हमें निरंतर प्रैक्टिस करनी है। तो बैठकर योग करने के साथ साथ चलते फिरते क्रम में भोजन बनाते, भोजन खाते, पानी पीते, दूध चाय पीते, कुछ न कुछ अभ्यास चालू रहे, इस पर सबको ध्यान देना है। अभ्यास चालू रहे।
भाई जी ओम शांति।
मेरे साथ साथ अभ्यास करें। मैं स्वराज अधिकारी हूं। बैठे मस्तक सिंहासन पर और राजा हूं। राजा हमेशा शक्तिशाली होगा, तो मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कर्मेंद्रियों का भी मालिक हूं, मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूं। ये फीलिंग अपने को रोज देनी पड़ेगी। हे मन, मैं तुम्हारा मालिक हूं। संस्कार भी बहुतों के बदलते नहीं है। ये फीलिंग देंगे, हे संस्कारों, मैं तुम्हारा मालिक हूं। अभी तुम अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। मेरे संस्कार ये नहीं है, ये तो रावण के संस्कार हैं। रावण के संस्कारों को कह दो तुम गेट आउट। मुझे तो ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। मेरे संस्कार तो सबके लिए सुखदाई हैं, प्रेम बांटने वाले हैं, मधुर बोल बोलने वाले हैं। तो मैं स्वराज अधिकारी हूं। ये हमारी एक बहुत सुंदर साधना है, सर्वोत्तम साधना कहेंगे इसको। क्योंकि मन को कंट्रोल में कर लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। मन पर नियंत्रण करने से हम अनेक सिद्धियों और वरदानों के मालिक बन जाते हैं। मन ही मनुष्य को भटका रहा है, मन मालिक बन गया है, मालिक हम हैं। देखो हाथ के मालिक हम हैं, ये तो नहीं कहेंगे हाथ मुझसे अलग है, लेकिन फिर भी हम बोलते ये हैं मेरा हाथ। लेकिन हाथ हमारी आज्ञा के बिना तो नहीं ऊपर नीचे होता। हम कहें मुझे हाथ इधर रखना है तभी रखेंगे, हम संकल्प करें मेरा हाथ यहाँ रखना है तो रखेंगे, हम संकल्प करें मुझे ऐसे बैठना है तो हाथ हमारा यहाँ जाएगा। हाथ हमारा है, ये स्थूल चीज है। देखिए ये भी तो कमांड जा रहा है ना आत्मा से ब्रेन को, और ब्रेन का कमांड जा रहा है हाथ को। हम बस ये संकल्प बढ़ाते चले, हे मन मैं तुम्हारा मालिक हूं, तो धीरे धीरे मन भी स्वीकार कर लेगा आत्मा मेरा मालिक है। तो आत्मा की ही शक्ति मन है, मालिक बनने से मन हमारे आदेश का पालन करेगा जैसे हाथ करता है। तो ये साधना हमें निरंतर करनी है। एक छोटा सा रहस्य याद रखेंगे, और आज जो भी यहाँ सुन रहे हैं अगर ये रहस्य समझ लिया तो बहुत काम हो जाएगा। और वो रहस्य है, हमारे संकल्प मन में ऑटोमेटिक चल रहे हैं, लेकिन कभी हमने पर चिंतन कर लिया तो वो चलेंगे, कुछ देख लिया वो चलेंगे, कुछ सुन लिया वो चलेंगे। अगर हम एक विधि अपना लें कि हमें अपने मन में श्रेष्ठ विचार पैदा करने हैं, हम क्रिएटर हैं, तो आप अनुभव कर लो अगले एक हफ्ता कि जब तक बाबा आए तब तक 10-12 दिन है, मन में आपने सुंदर संकल्प कर लिया मैं एक महान आत्मा हूं, मुझे सबको सुख देना है। देखो ये एक संकल्प अनेक संकल्पों को समाप्त कर देगा। कुछ समय के बाद फिर आपने संकल्प कर लिया मैं इस संसार की बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये माया मेरे सामने कमजोर है, ये परिस्थितियां कुछ नहीं है, मैं इन सबसे पावरफुल हूं। बहुत देर तक संकल्प शांत हो जाएंगे। हम श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना सीखें, और श्रेष्ठ संकल्प एक स्वमान के होते हैं, दूसरे हमें रोज मुरलियों से मिल रहे हैं। तो हम सभी मन को कंट्रोल करने के लिए ये बात अब प्रैक्टिस में लाएंगे कि मन में जो स्वतः ही विचार चल रहे हैं, कल के चल रहे हैं, काम काज के चल रहे हैं, परिवारों के चल रहे हैं, वो समाप्त होंगे। एक तो होते हैं जरूरी विचार, भाई काम काज आपको करना तो विचार चलेंगे ही, लेकिन दूसरे हैं व्यर्थ विचार, जिनका कोई मीनिंग नहीं, जिनकी हमें जरूरत नहीं, वो चलते रहते हैं हमेशा, उससे हमें अपने को बचाना है। और उससे बचाने का साधन मुरली की कुछ बातें याद रखना, जैसे आज की मुरली थी सवेरे की, स्नेह अथॉरिटी नम्रता सत्यता के बारे में बाबा ने कितना बोला, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना दी। तो कुछ बातें हम याद करें, याद करेंगे तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। उन बातों की धारणा भी होगी कि भाई हम कहीं ज्ञान गुस्से से दे देते हैं, कोई नहीं सुनता, अभिमान से भी दे देते हैं, सीधा बोल देते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान आकर ज्ञान दे रहा है, सब झूठे हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम बहुत स्नेह पूर्वक अपनी बात कहते हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि विश्वास झूठे हैं, हमें ये कहना चाहिए शास्त्रों में जो ज्ञान है वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन और भी कुछ जानना बाकी है। ऋषि लोग परफेक्ट नॉलेज नहीं लिख सके शास्त्रों में, कुछ जानना बाकी है। उसके लिए भगवान को आकर सत्य ज्ञान देना पड़ता है। अगर संपूर्ण सत्य ज्ञान होता तो इस संसार का पतन न हो रहा होता। हम चढ़ रहे होते ऊपर, लेकिन हम गिरते आए हैं दिनों दिन, तो कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। तो हम सभी स्वराज अधिकारी बनेंगे। बुद्धि के लिए आज बाबा ने कहा, बुद्धि को कंट्रोल करना माना, बुद्धि में केवल ईश्वरीय ज्ञान भर लेना, बाकी कुछ नहीं। पुराना ज्ञान बाहर, क्योंकि वो सत्य ज्ञान नहीं था। देखिए, जो लौकिक एजुकेशन है वो मनुष्य को डिवाइन विजडम नहीं दे रही है, दिव्य विवेक प्रदान नहीं कर रही है। ईश्वरीय ज्ञान हमें डिवाइन विजडम दे रहा है। इस डिवाइन ज्ञान के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं। कर्मेंद्रियों पर भी हमें राज करना है। लोगों ने बहुत चर्चा की है आज तक स्वाद इंद्री, जीभ के रस पर नियंत्रण कर लेना, ये भी एक शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। जो खाने को मिल रहा है उसमें ही परमानंद, उसमें ही टेस्ट, मांग कुछ नहीं, सीधा सादा जीवन, सीधा सादा भोजन। तो हम सभी इस पे ध्यान दें कि हमारी कर्मेंद्रियां व्यर्थ की तरफ तो नहीं जा रही है, वो बाह्य मुखी तो नहीं हो गई। देखो, बाह्य मुखता का अर्थ कि हमें सुनना है, बाहर की बातें सुनने में बहुत रुचि ले रहे हैं हमारे कान भी। नो, हमें अंतर्मुखी करना है। सच्चानंद ईश्वरीय बातें सुनने में ही आएगा, ये पक्का कर दें अपने अंदर। तो हम सभी स्वराज अधिकारी बनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से बनेंगे, सोचने से नहीं बनेंगे। बीज रूप स्थिति में चलेंगे, जिसको ज्वालामुखी रूप का, और ये स्थिति है मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ बैठी हूं। सबसे पावरफुल बाबा की संपूर्ण एनर्जी, उनके संपूर्ण वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। प्रैक्टिस से ये भी इजी हो जाएगा। इसको दूसरे स्वरूप में भी ले सकते हैं, मैं यहां हूं आत्मा इस शरीर में, और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। केवल एक संकल्प में स्थित हो जाएं, ऊपर से बाबा की शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। तो इसकी डेफिनेशन रख लेंगे अपनी बुद्धि में। एक संकल्प में लंबा समय स्थित होना, लंबा समय माना 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, ये ज्वाला स्वरूप योग है। यानी योग ये अग्नि है, सबने साकार में सुना है, योग अग्नि है जिसमें सारी गंदगी जल जाती है। और ये योग अग्नि इतनी बड़ी जलानी है कि सारा संसार, उसकी जो गंदगी है, विकार है, पाप है, इसमें जलकर नष्ट हो जाए और ये संसार स्वर्णिम संसार बन जाए। तो ये प्रैक्टिस करेंगे। ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पहले हमें इसमें अशरीरी होना होता है, और फिर परमधाम में जाना बाबा के पास। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम सारा दिन अच्छे संकल्पों में रहें, अच्छी स्थिति में रहें, बाह्य मुखी न हो, अंतर्मुखी रहें। हो सके थोड़ा थोड़ा मौन भी रख लें, जैसे अब जनवरी आ रही है, आप सवेरे और शाम 8 घंटे मौन रख सकते हैं। सारा दिन तो बहुतों के लिए संभव नहीं होता। और मौन के बाद दूसरी स्थिति होती है धीरे बोलना, कम बोलना। इसको मूवी कहते थे हम लोग यज्ञ में। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सवेरे से हम 4 घंटे 4 घंटे मौन रख लें, और दिन में जब आपका कारोबार है आप थोड़ा कम बोलेंगे, धीमे बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना दूसरे लोग हमसे तंग ना हो जाएं। तो इस तरह यदि हम करेंगे और व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, मोबाइल से भी थोड़ा मुक्त रहेंगे, ज्यादा नहीं यूज करना उसको, तो बीज रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति हमारी सहज अनुभव में आएगी। सारा दिन स्वमान का अभ्यास बढ़ाओ, कर्मों में थोड़े थोड़े अभ्यास करते रहो, सवेरे शाम बैठ कर बीज रूप स्थिति का अभ्यास करो, फरिश्ते स्वरूप के द्वारा संसार को सकास दो, तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि जब हम देने का काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं, बहुत कुछ ठीक हो जाता है। तो बाबा की मुरली, ऐसे तो शुभमान पे भी एक अच्छी क्लास हो जाए, बीज रूप पर, ज्वाला स्वरूप पर भी एक अच्छी क्लास हो जाए, लेकिन सार ये है सभी इसमें से कुछ चीजें संभालें, हम भगवान के परिवार बन गए हैं। ये बहुत नशे की बात है। स्वमान आप अपने चुनेंगे, उनके अभ्यास करेंगे, बीज रूप की काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी है और स्वराज अधिकारी बनना है। चार बातें ध्यान रखेंगे, जब तक अगली मुरली में बाबा हमें नई बातें सुनाए, इन चारों के नशे में भी रहेंगे, खुशी में भी और प्रैक्टिस में भी। ओम शांति। अब क्वेश्चन पूछ लें भाई साहब। डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। अपना है तो चालू है ना? इसमें भी घूम घूम कुछ नहीं आई।
अब आई
थोड़ी
जी। क्वेश्चन वो काफी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है कि क्या अभी भी हम 108 की माला में आने के चांस ले सकते हैं, और अगर तो इसके लिए मुख्य पांच सात विचार करूंगा।
बाबा ने 108 की माला के लिए कुछ बातें बहुत ही सुंदर कही हैं, और उसमें से एक है कि अंत तक भी थोड़ी सी सीटें खाली रखी जाती हैं, ताकि कोई भी फास्ट गति से आए और सीट पर बैठे। इसलिए एंड तक भी किसी को भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, अवसर रहेगा विजयमाला में आने के लिए। लेकिन इसकी शर्तें हैं 8 घंटा लंबा समय का योग, बहुत अच्छी प्योरिटी और संपूर्ण निरंकारिता, संतुष्टता, ये धारणाएं लेकर चलेंगे और योग बहुत अच्छा करेंगे तो फुल चांस विजयमाला में आने का।
भाई जी दूसरा प्रश्न है, आदरणीय भाई जी, बहुत बार हम प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन फिर भी हार हो जाती है।
और क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लियर करो।
भाई जी अभी क्या बात?
अब ठीक है
जी। सो कि आदरणीय भाई जी, बहुत बार हम प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन फिर भी हार हो जाती है, और फिर से प्रतिज्ञा करने की हिम्मत नहीं होती, लगता है प्रतिज्ञा ना निभाने का फाइन लगेगा, तो कृपया स्पष्ट करें कि हम प्रतिज्ञा कैसे करें।
प्रतिज्ञा तो एक बार करना ही काफी है, उस प्रतिज्ञा को सदा निभाने के लिए योगी जीवन बनाने की प्रतिज्ञा करें, क्योंकि ये भिन्न भिन्न तरह की कमजोरी होती है, चाहे प्योरिटी की प्रतिज्ञा है या क्रोध मुक्त होने की प्रतिज्ञा। ये केवल प्रतिज्ञा से पूर्ण नहीं होती, इसके लिए बहुत अच्छा योग होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा करें आप, उसके निमित्त एक घंटा रोज योग भी करना चाहिए, तब प्रतिज्ञा आगे बढ़ेगी, जीवन फलीभूत होगा, टूटेगी नहीं। नहीं तो ये तो सीधी सी बात है, बार बार प्रतिज्ञा टूटे तो फिर कोई प्रतिज्ञा क्यों करेगा। तो योगी जीवन बनाने का एक प्लान बनाए।
भाई जी अगला क्वेश्चन है, योग से विकर्म विनाश होते हैं परंतु ज्ञान में आने के बाद जो विकर्म।
फिर कट गई आपकी आवाज। आवाज नहीं।
भाई जी अभी आ रही है आवाज।
हाँ
आई जी। सो भाई जी अगला क्वेश्चन है, योग से विकर्म विनाश होते हैं परंतु ज्ञान में आने के बाद जो विकर्म होते हैं वे नष्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करें।
विशेष पुरुषार्थ ये कि सूक्ष्म जो पाप कर्म होते हैं ज्ञान में आने के बाद उनको पहचान लें और उनसे अपने को मुक्त करें। वो सहज काम है, जैसे हमारी दृष्टि वृत्ति कहीं थोड़ी निगेटिव हो जाए तो ये पाप हो जाता है, इसको ठीक करेंगे, ज्ञान उसके लिए है हमारे पास। हमारे बोल किसी को डिस्टर्ब करते हो ये भी पाप बनता है, उसको भी ठीक करेंगे। हमारे बोल किसी की खुशी छीनते हो, हमारी स्थिति सेवाओं में विघ्न बनती हो, हम टकराव में आते हो, ये भी विकर्म है बहुत, ये थोड़े बड़े विकर्म हो जाते हैं, उससे सेवा रुक जाती है। और भी जितने भी विकर्म हैं, कोई चोरी करने की आदत है, कोई झूठ बोलने की आदत है, कोई छुप के काम करने की आदत है, श्रीमत की अवज्ञा भी विकर्म होते हैं। मान लो बाबा की आज्ञा है सवेरे उठने की, लेकिन हम नहीं उठ रहे, तो हालांकि हमें नुकसान तो हो ही रहा, लेकिन अवज्ञा का बोझ भी चढ़ता रहता है, स्लोली एंड स्लोली, भले वो गति धीमी है लेकिन ये बात मन को भारी करती रहेगी। इसलिए हम पहचान लें, क्रोध आ गया, सूक्ष्म विकर्म बन गया, बहुत इच्छाएं, मैपन बहुत रहा, ये भी सूक्ष्म विकर्म बन गया। कुछ हमने सेवा की उसका बार बार वर्णन कर रहे हैं, हम मान की इच्छा रख रहे हैं, दूसरों की लेग पुलिंग कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं, ये सब विकर्मों में आ जाता है। तो इनकी पहचान हो और ज्ञान के द्वारा इनसे बचेंगे तो योग भी अच्छा होगा और विकर्म तेजी से विनाश होंगे। सच तो यही है कि ज्ञान में आने के बाद जो विकर्म बनते हैं वही आत्मा के लिए सबसे अधिक घातक हैं, उनसे बचना है।
जी भाई जी। भाई जी अगला क्वेश्चन है, परमात्मा के दिल तक नशीन तो हम बन जाते हैं लेकिन प्यारे बाबा के दिल तक पर टिके रहने के लिए क्या चेकिंग करनी चाहिए।
अब क्या वो दिल तक बड़ा पवित्र है ना, तो उसपे केवल वही बैठ सकते हैं जो बहुत स्वच्छ और बहुत पवित्र होंगे। जरा भी व्यर्थ संकल्प आए तो आप ही गिर जाएंगे वहां से नीचे, पर चिंतन करने लगे तो वहां से नीचे आ टपकेंगे। तो इसलिए जितने हम बाबा की कुछ मूल आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, जैसे पवित्रता है, रोज मुरली सुनना है, बाबा के प्यार में सेवाएं करनी है, अमृत वेले योग करना है, किसी को दुख नहीं देना है, सच्चे बनकर रहना है, ये जो बाबा की मुख्य शिक्षाएं, इनको फॉलो करेंगे तो बाबा हमें बहुत प्यार करेगा। दिल पे बैठे रहने का अर्थ है बाबा हमें बहुत प्यार करता है, और जब भगवान प्यार करता है तो वो हमें बहुत आगे बढ़ाता है, बल देता रहता है, अवसर प्रदान करता है, योग्यताएं दे देता है। उसका प्यार कोई छोटी चीज नहीं है, हम तो प्यार करते ही हैं उसे, पर अगर उसके प्यार को जीत लें तो वो अपना सर्वस्व हम पे कुर्बान करने लगता। अभी भविष्य की बात नहीं, अभी डेली लाइफ में, तो बस इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो दिल तख्त पे अपना आसन जमा के बैठे रहेंगे, कोई हटा नहीं पाएगा।
जी भाई जी अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण परिवार में रहते संस्कारों का टकराव ना हो और अगर कुछ थोड़ा बहुत हो भी तो उसका प्रभाव स्वयं पे ना पड़े, इसके लिए क्या विधि अपनाएं।
टकराव का कारण केवल अहम होता है, मनुष्य का ईगो, इसके लिए अहम को जीतने का तरीका है स्वमान। स्वमान हमें बहुत सरल चित कर देता है, झुकना सिखा देता है और मिलन करना भी सिखा देता है। इसलिए पहले तो लक्ष्य रख लें कि टकराव में हमें आना ही नहीं है, चाहे झुक के चलना पड़े, चाहे उस स्थान से हटना पड़े, फाइनली चाहे वो सेवा में छोड़नी पड़े, हम टकराव में नहीं आएंगे। क्योंकि टकराव तो एकाग्रता को भी नष्ट करता है, खुशी छीन लेता है, टकराव में तो सारा स्पिरिचुअल लाइफ बेकार हो जाता है। इसलिए लक्ष्य भी रखना है, झुक कर चलना है, सरलता से चलना है, हाँ जी करके चलना है। तीन धारणाएं अपनाएंगे, टकराव से मुक्त रहेंगे।
हाँ भाई जी, अगला क्वेश्चन कल की मुरली से रिलेटेड है। बाप दादा समय प्रमाण पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए कहते हैं, तो कृपया संस्कारों का अंतिम संस्कार कैसे करें जिससे वह पुनः इमर्ज ना हो।
यही दो जो बाबा ने तीन स्वरूप का विशेष अभ्यास कराया ना हमें, अनादि आदि और पूज्य, इस स्वरूप का बहुत अभ्यास करेंगे और थोड़ी सी मेहनत कर ले कुछ समय के लिए कि ये संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो ये है। उसे जैसे हम इग्नोर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, मान लो किसी को क्रोध आता है, वो संस्कार है उसका, तो सवेरे उठकर ये फीलिंग दें कि क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। तो जिसे रिजेक्ट करेंगे वो दूर जाएगा, जिसे एक्सेप्ट करेंगे वो जीवन में समा जाएगा। लेकिन थोड़ा दिन इसके लिए भी योग अभ्यास करना जरूरी है। ज्वाला स्वरूप योग से ये पुराने संस्कार जल के भस्म हो जाते हैं। जो बाबा ने कहा ना, रावण को मारते नहीं जलाते भी हैं, तो योग से, पावरफुल योग से संस्कार जलते रहेंगे, सॉफ्टनेस इजीनेस आती रहेगी।
जी भाई जी, अगला क्वेश्चन है, मनसा सेवा का सही तरीका क्या है और इससे होने वाली प्राप्तियां क्या क्या है।
मनसा सेवा और सर्विस थ्रू वाइब्रेशन दो ये अलग अलग चीजें हैं। मनसा सेवा है कि सुंदर संकल्पों से सेवा, जिसमें हमारी शुभ भावनाएं भरी होती हैं, और वाइब्रेशंस की सेवा होती है जो योग के वाइब्रेशंस, पवित्रता के वाइब्रेशंस हम संसार में फैलाते हैं। शुभ भावनाओं को ऐसे करेंगे जैसे मैंने सवेरे आज एक विजन बनाया था, अब फिर से सुन ले जो नहीं थे सवेरे, कि मैं फरिश्ता हूँ और एक ऊंची पहाड़ी पर हूँ, पूर्वज हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। पहले कुछ अभ्यास करेंगे, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर संकल्प करेंगे चारों देवकुल की करोड़ों आत्माएं हैं, उन्हें कुछ संकल्प देंगे, जैसे देवकुल की आत्माओं का आह्वान करेंगे, आ जाओ भगवान तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ, अपने जीवन को निर्विघ्न बनाओ, सबको सुख मिल जाए, सब पवित्र हो जाए, सबके अंदर का देवत्व जागृत हो जाए। तो मन से सुंदर संकल्प देना मन की सेवा है, और फिर उन्हें वाइब्रेशंस दे देंगे ताकि जो संकल्प हम भेज रहे हैं वो उनके अंदर समा जाए, ये विधि अपनाएंगे।
भाई जी, अगला क्वेश्चन है, तमो प्रधानता या अभी जो विश्व में व्याप्त परिस्थिति है, इसका और मानसिक विकारों का क्या संबंध है और इससे कैसे बचें?
देखिए, इस तमो प्रधानता को मानसिक विकार अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। किसी में काम वासना के संस्कार हैं तो बाहर जो काम की आंधी चल रही है उसका असर इस व्यक्ति पर आ जाएगा। किसी में लोभ के संस्कार हैं तो बाहर जो इच्छाएं बढ़ती जा रही मनुष्य को उसका इफेक्ट इस पर आ जाएगा। तो बाहर के वातावरण का इफेक्ट अंदर अगर वो संस्कार है तो आता रहेगा, आकर्षण होता रहेगा दोनों चीजों में। इसे बचने का सहज उपाय है श्रेष्ठ स्वमान। हम स्वमान में रहते हैं तो हमसे पावरफुल किरणें चारों ओर फैलती हैं, हमारे चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बन जाता है और हम सेफ हो जाते हैं। इसलिए स्वमान, किसका योग न भी लगता हो तो स्वमान बहुत बड़ी सेफ्टी का साधन रहेगा। साथ साथ ये भी अभ्यास करें, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बस ये अभ्यास भी करेंगे, सेफ रहेंगे।
जी भाई जी, अगला क्वेश्चन है, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे तुम्हारी अंतिम सेवा होगी अंतवाहक सेवा, अंतवाहक सेवा द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी, सो यह अंतवाहक सेवा कैसे होगी और इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें?
सेवा अंतवाहक नहीं, अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा। इसमें ऐसा होगा जो बहुत अच्छे योगी और पवित्र आत्मा बन जाएंगे, जो श्रेष्ठ वमान में स्थित हो जाएंगे, वो क्या अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूं और जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर ये वस्त्र सामने टंगा है, खूंटी पे टांग देते ना कपड़े, मेरे सामने वो शरीर है, उसको अंतवाहक शरीर कहते हैं। अंत का जो वाहन है हमारा, या जिसकी गति अनंत है, इसका दूसरा नाम अनंत वाहक शरीर भी है, जिसकी गति अनंत है, वो सामने है और मैं आत्मा ने उसमें प्रवेश किया, कुटी में बैठी और उड़ गई कहीं भी। मान लो आपको प्रतीत हुआ, आपको आभास हुआ, आपको मैसेज आया, फलानी जगह 5 लोग मर गए हैं, हाहाकार हो गया है, अब मैं इस अंतवाहक शरीर को धारण करके उड़कर वहां पहुंच गया और वहां वाइब्रेशंस फैला दिए, सबको अच्छे संकल्प भी दिए, सबका चित शांत हो गया। फिर दूसरी जगह उड़कर गए, पता चला वहां ये परिस्थिति है, वहां पहुंचे, वाइब्रेशंस फैलाए, थोड़े सुंदर विचार दे दिए। तो ये अभ्यास आप शुरू कर सकते हैं 1-1 मिनट तक, अब तक फिर आगे चल के जब प्रैक्टिस हो जाएगी और संसार इस परिवर्तन की प्रक्रिया में गहराई से उतर जाएगा, जब प्रकृति प्रकोप बहुत होने लगेंगे तो हाहाकार हो जाएगा, उस समय सूक्ष्म शरीर धारण करके कहीं भी जाकर मदद करना, ये होगी अंतर्वाहक शरीर की सेवा।
भाई जी, अभी की जो परिस्थिति हम विश्व में देख रहे हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कर्मयोग द्वारा अपने कर्म भोग पर हम कैसे विजयी बने और इसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करें?
बहुत लंबा समय यदि हम शरीरीपन के अभ्यास में रहते हैं तो हमसे यानी आत्मा से बहुत प्योर एनर्जी पूरे शरीर में फैलती रहती है। अगर हम बहुत अच्छे स्वमान में रहते हैं, सुंदर संकल्पों में रहते हैं, तो आत्मा से बहुत सुंदर एनर्जी शरीर में फैलती रहती है, उससे हमें पीड़ा कम होगी और उससे हम बहुत सेफ हो जाएंगे हर चीज से, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक होता है। सुंदर विचार, ऐसा दीदीपन, और जहां थोड़ा और कठिन लगे ना आपको, आप बाबा को बुला लिया करें इस संकल्प से कि आप सुप्रीम सर्जन हैं, आ जाओ हे सुप्रीम सर्जन, वैद्यों के वैद्य, डॉक्टर के डॉक्टर, आओ मुझे मदद करो, तो बाबा आ जाएंगे और मदद मिल जाएगी, ये परम सत्य है। बस ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजों से, आने वाली बहुत सारी चीजें अभी होंगी ना, उनसे सेफ रहेंगे।
भाई जी, सभी कुमारों की तरफ से एक प्रश्न है कि बहुत बार अभी जो हम बाहर परिस्थिति देख रहे हैं तो उसमें बहुत बार कुमार जो हैं वो थोड़ा ड्वेल में आ जाते हैं कि बाहर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रिफर करें या ईश्वरीय सेवा में वक्त दें, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाएं या ईश्वरीय सेवा में ज्यादा ध्यान लगाएं। सो कुमार जो इस ड्वेल परिस्थिति में, द्विधा मनस्थिति में रहते हैं, तो वो किस तरह से अपने को बैलेंस करें?
एक्चुअली रहना नहीं चाहिए, समय पर जो सेवा हमारे सामने हो उसमें हमें पूरा योगदान देना चाहिए, अपनी जॉब भी चालू रखनी चाहिए, जॉब छूटती है तो अच्छी स्थिति योग अभ्यास के द्वारा पुनः प्राप्त करने के अच्छे अनुभव करने चाहिए। तो बैलेंस रखना है जीवन में, क्योंकि अगर आप जॉब से पूरे मुक्त होकर सेवाओं में लगते हैं तो भी इतनी सेवा नहीं है, आप बोर हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन आगे चल के बहुत सेवाएं आएंगी, तब अगर समय की मांग होगी तो आप सब कुछ छोड़ के सेवा में लग जाना, लेकिन तब तक दोनों चीजों का बैलेंस जीवन में रखना आवश्यक है और बहुत आवश्यक है अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाए रखना। मैं बाबा का ये महावाक्य सदा याद दिलाता हूँ सबको, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। जॉब भी गई है ना, आप अपनी स्थिति को बनाने की मेहनत करो, शायद दूसरी जॉब मिल जाएगी। ये करना है कुमारों को।
और भाई जी अभी हमारा आखिरी प्रश्न है, ये कल की मुरली के रेफरेंस से है कि संपन्न स्थिति बाप समान कैसे बनाए।
आखिरी क्वेश्चन आ गया इतनी जल्दी, बात बहुत है।
ये सिलेक्टेड 10-12 क्वेश्चन है।
संपन्न और संपूर्ण स्थिति, ये तो हमारी फाइनल स्थिति है। बहुत अच्छा, सभी अपने योग का प्लान बनाएं। जैसे कल बाबा ने कहा ना, योगी जीवन वाले हो तुम, ये बैठने वाले योगी नहीं कि भाई एक दो घंटा कर लिया बस मुक्त हो गए, लेकिन एक अच्छा ऐसा प्लान बनाओ आप कि सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहे आपके अंदर। और ये प्लान खुद ही बनाया जाता है, किसी ना किसी तरह ये फीलिंग बनी रहे कि बाबा से हम जुड़े हुए हैं। थोड़ा दिन थोड़ी प्रैक्टिस मेहनत से करेंगे फिर ये नेचुरल हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न अभ्यास ले लें आप, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, कर्म क्षेत्र पर इसको जरा कर लें अभ्यास, 5-7 बार रिपीट कर लें, कभी बाबा मेरे साथ है उसका आह्वान कर लें, तो स्थिति आगे बढ़ती जाएगी। संपन्नता का अर्थ होता है सर्व खजानों में फुल, और संपन्न स्थिति का प्रूफ है जीवन में संपूर्ण संतुष्टता, चारों ओर से हट गए, सब कुछ मिल गया। जैसे कल बाबा ने कहा ना, मिल गया। कोई पूछे यहाँ तुम्हें क्या मिला, तो कहोगे ना कोई अप्राप्त चीज ही नहीं रही जो मिले, सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया। तो जो हमारे 9 खजाने हैं, मैंने कई बार क्लासेज कराई इस पे, ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का, खुशी का, श्रेष्ठ संकल्पों का, पवित्रता का, पुण्य कर्मों का, ये हमारे खजाने हैं, ये भरपूर हो जाएं। समय को भी हमने सफल कर लिया हो, कर्म भी ऐसे किए हो कि सबकी दुआएं मिल रही हो, ज्ञान से भी भरपूर हो गए हो, तो ये हो जाएगी हमारी संपन्नता। थोड़ी मेहनत करनी है, खुशी भी हमें भरपूर रहे, शांति भी हमारे जीवन का श्रृंगार बन गई हो, और संपूर्णता, ये इसको आप समझ सकते हैं जैसे बैटरी हमारी फोन की रोज डाउन हो जाती है, 10% पे आ गई, 15 पे आ गई, फिर हम उसे चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करके फिर 100 कर देते हैं, तो ऐसे ही आत्मा की बैटरी को फुल्ली चार्ज करके 100 तक पहुंचाना, ये परफेक्शन संपूर्णता है। इसमें हमारे सब किनारे छूट जाएंगे। बाबा इसका उदाहरण देते हैं, बहुत सहज उदाहरण है, माताएं जानती हैं, हलवा आप बना रहे हैं तो हलवा कढ़ाई से चिपकेगा नहीं, अब अगर आप ऐसे करेंगे तो घूमता रहेगा। माना हलवा तैयार हो गया, तो तुम भी जब तैयार हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, तो सभी किनारे जो तुमने पकड़े हुए हैं वो छूट जाएंगे, और एक बहुत ही संतुष्टता से भरी, ईश्वरीय नशे से भरी, संपूर्ण प्योरिटी से भरी, योगयुक्त जीवन हो जाएगी। ये है संपन्नता और संपूर्णता। और ऐसी स्थिति प्राप्त करने वाले सभी कोई देह छोड़ के जाएंगे नहीं, बल्कि ये स्थिति प्राप्त करने वाले यहीं रहेंगे। इनकी संपूर्ण स्थिति के द्वारा विश्व की फाइनल सेवा होगी। इसलिए बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है कभी, जो सबको पता नहीं है, क्योंकि वो सबके काम की भी नहीं है, इसलिए सब उसे कैच नहीं कर पाए, और वो ये थी। वैसे तो रोज बाबा मुरली में कहते घर जाना है, कल भी कहा आदि से और रिटर्न जर्नी तक की यात्रा के जो स्वमान है उन्हें याद करो। लेकिन उसमें कहा था, घर जाने की बात नहीं की, बहुत पावरफुल बात कही, जब तक तुमने अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तुम घर नहीं जा सकोगे। जैसे ऑफिस में काम मिल जाए भाई, ये पूरा करके जाना है, तो हमें भी बहुत सारे अभी काम करने बाकी हैं, अनेकों को उन कार्यों का पता नहीं है, और वो कार्य ऐसे होंगे। मैं एक उदाहरण दिया करता था बहुत दिन से, आपके यहाँ भी दिया होगा, कि 2025 से ऐसा समय आ जाएगा इस संसार में, मुझे तो लग रहा अब उससे पहले ही आ जाएगा, कि संसार के आधे लोग रात को सोएंगे नहीं, हमें उन्हें सुलाना होगा वाइब्रेशंस देकर। जगत माताएं बन जाएंगी बहुत सारी बहनें, जिसे माँ अपने रोते हुए बच्चों को सुला देती है, ऐसे ही प्यार के वाइब्रेशंस देकर सबको सुला देंगे। संसार में मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे, इलाज नहीं होगा, वाइब्रेशंस देकर उन्हें मुक्त कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बीमारियां आएंगी जो लाइलाज होंगी, अपनी दृष्टि देखकर लोगों को राहत दे देंगे। भक्तों को कहीं साक्षात्कार की इच्छा होगी, साक्षात्कार हो जाएंगे, दुख बहुत बढ़ेगा क्योंकि बहुत मरेंगे लोग, सभी मरेंगे, उसका दुख मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन वो दुख है। वाइब्रेशंस देकर सबको दुखों से मुक्त करेंगे। और एक बहुत बड़ा काम हमें करना होगा कि जो भटक रही है आत्माएं, कोरोना से भटक गई हैं और सुसाइड भी लोग बहुत कर रहे हैं, पाप कर्मों के कारण भी बहुत आत्माएं पुनर्जन्म नहीं ले पा रही हैं, उन सबको हमें वाइब्रेशंस देकर घर भेजना होगा। तो ये बड़े बड़े काम करने हैं। अब ये काम गिनी चुनी आत्माएं करेंगी, इसलिए जो भी बहुत मंग उत्साह में रहते हैं, जिनका योग अच्छा लगता है, जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, वो अपने को इस महान कार्य के लिए तैयार करें, तो ये संपन्नता और संपूर्णता से महान कार्य करने होंगे।
जी थैंक यू भाई जी। एक प्रश्न जो हमेशा सभी के मन में रहता है, जो बाबा ने अंतिम पेपर बताए हैं, सो उसमें से एक पेपर जो बाबा ने बताया है वो इविल सोल, जैसा आपने भी अभी बताया, तो इस सब्जेक्ट के बारे में काफी आत्माओं को जानने की इच्छा रहती है और तैयारी कैसे करनी है ये भी स्पष्ट नहीं होता है। सो इस पेपर को अच्छी तरह से पास करने के लिए हमें अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए?
देखो, ये संसार में ये घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, उन लोगों के घरों में भी बढ़ रही हैं जो मानते नहीं इन चीजों को, फिर मानना पड़ता है, उन्हें भी परेशान हो जाते हैं, कोई इलाज नहीं हो पाता, किसी को रात को वो सोने नहीं देती तो किसी को कुछ गलत अनुभव कराती हैं, दिखाई देती हैं तो लोग डर जाते हैं, फिर मानना पड़ता है कि भाई ये तो है। हम लोग भी नहीं, मैं भी पर्सनली नहीं मानता था, लेकिन बाबा ने कहा, फिर ऐसे केस होने लगे तो मानना पड़ा कि नहीं ये तो है। आत्माएं बहुत सारी जन्म नहीं लेती हैं, भिन्न भिन्न कारणों से वो भटक जाती हैं, और जिनसे उनका हिसाब किताब होता है ना जन्म जन्म का, उनके पास वो ज्यादा आती हैं, उनको परेशान करेंगी या कष्ट देंगी। तो इसमें एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान बहुत बढ़ाना चाहिए, इससे आपके अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलेंगी, चारों ओर पावरफुल ओरा भी बन जाएगा, आभा मंडल बन जाएगा, तो ये आत्माएं आएंगी नहीं। और मैं सभी को कहूंगा, अपने घरों पर बाबा का झंडा अवश्य लगवाएं। झंडे ये जो भक्ति में भी चलता आ रहा है ना, मूर्तियां, मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो उसे वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। यही महत्व है इन मूर्तियों का, बिना प्राण प्रतिष्ठा किए वो पत्थर ही है। तो ऐसे ही ये झंडा और बाबा का जो कास्केट होता है बड़ी लाइट, ये अपने घर के बाहर मेन गेट के बाहर लगा ही देना चाहिए, जला दो, रात को तो जला ही दो। तो उससे भी जैसे कोई प्रवेश करे उसको वो दिखाई दे, उससे भी आत्माएं चली जाती हैं। अपने घर में पानी चार्ज करके भी छिड़क दें और थोड़ी प्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जो आत्माएं बहुत इम्प्योर हैं उनकी ओर ये अट्रैक्ट होती हैं। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इनसे काफी सेफ रहेंगे और फिर हम इन्हें मुक्त कर सकेंगे। कहेंगे तो ऐसे भी केस हुए, अभी अभी का एक केस है, बिल्कुल चल ही रहा होगा। मुझे पूछा उसके लिए तो एक बहन के पास बहुत सारी आत्माएं आगे दिखने लगी उन्हें और आवाज भी आने लगी, हमें मुक्ति चाहिए, मुक्त करो, हमें कोर्स करना है, कोर्स कराओ। अब कोर्स कौन कराए, सब तो डर गए। फिर एक बहन तैयार भी हुई, उसको थोड़ा इफेक्ट हो गया, फिर वो भी डर गई तो छोड़ दिया। लेकिन ऐसे भी आत्माएं आती हैं क्योंकि बहुत दुखी हैं, दुखी हैं तो उन्हें मुक्ति चाहिए। अब दूसरों को तंग कर करके भी तंग हो गए हैं वो भी, तो हम ऐसे अभ्यास करेंगे, आह्वान करने की जरूरत नहीं उनकी, आपके आह्वान से वो सब आ जाएंगे। ये भी कईयों ने गड़बड़ की, एक टीचर ने छत पे गई सेंटर के, आह्वान किया, आ जाओ सब भटकती आत्माओं, मुक्ति का वरदान दूंगी। अभी 300 आ गई तो चार दिन के बाद ही, अब वो घबरा के नीचे भाग गई। तो ये भी नहीं, हम केवल वाइब्रेशंस फैलाएंगे और इन सब आत्माओं को पहुंचेंगे, लेकिन पूर्वज मास्टर सर्वशक्तिमान पवित्रता की शक्ति से भरपूर ये सब संकल्प करके ये सेवा करेंगे।
भाई जी, मेरा अगला प्रश्न वही था जो आपने आखिरी में एंड जहां से किया, कि जब हम इन अतृप्त आत्माओं को जब हम सकाश देते हैं तो सकाश देते समय हमने क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जनरली पहली स्टेप यही होती है कि पहले हम आत्माओं को आह्वान करते हैं और फिर उसके बाद में उनको सकाश देते हैं। तो इसमें
पहले ही सच्चे स्वमान का अभ्यास करें, मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ ये भी अभ्यास करें, फिर केवल हम वाइब्रेशंस फैलाएं। जिनको भी मुक्त करना होगा बाबा को, बाबा का काम है, वो करेगा
जी। भाई जी, काफी सालों से आप समय प्रति समय 2020 का आप इंटीमेशन देते रहे हैं और अभी 2020 की शुरुआत भी उसी तरह से हुई जिस तरह से आप पहले से बताते आए हैं, और अभी 2020 की समाप्ति भी हो रही है। सो इसके आगे का, जैसा अभी आपने आगे भी बताया है कि अगले 10 साल हैं, हर साल अलग अलग बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इस तरह से हमें फेस करने हैं। सो अगले 5 साल का अगर हम एक प्लान बनाना चाहें तो वो प्लान में हमको किन किन चीजों को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा अभी की परिस्थिति में?
हाँ, पहले हमें रखना चाहिए कि मानसिक रूप से हम बहुत स्वस्थ रहें, उसके लिए बहुत हल्कापन। ऐसे नहीं हर बात हमारे अंदर में चली जाए, किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया और हम दिमाग में लेकर बैठे रहे उसको। सेंसिटिव नेचर नहीं, एक्सपेक्टेशंस बहुत कम, क्योंकि अब वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे, अब वो होगा जो विधि का विधान है। और अपने को बहुत पावरफुल स्वमान में रखना, एक्सेप्टेंस, ये चीजें बहुत जरूरी। हम एक्सेप्ट करें कि अब ये खेल परिवर्तित होने जा रहा है, स्वीकार कर लें, चेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने इस पर भी क्लासेस कराई इस बार, चेंज को स्वीकार करना, चेंज के लिए तैयार रहना, उसके साथ हल्कापन बहुत और सेंसिटिव नेचर नहीं। सेंसिटिव नेचर वाले मानसिक रोगी बन सकेंगे, बन जाएंगे, पक्का है ये। इसलिए पहली सेफ्टी हमें रखनी है, मानसिक रोग हमारे पास तक टच ही न करे, हम दाता बन जाएं। और दूसरी बात, प्रकृति के बहुत तूफान चलेंगे, हमें अब से ही मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं पवित्रता की देवी फरिश्ता हूं और प्रकृति का मालिक हूं, इन सब फीलिंग्स को भी बहुत बढ़ाना है। तो प्रकृति अभी मदद करेगी, प्रकृति को सकाश भी देते चलना है रोज। तीसरी बात, हम बाबा से कंबाइंड होने की प्रैक्टिस ज्यादा करें, मैं शिव शक्ति और शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया। तो जब हमारा कंबाइंड स्वरूप रहेगा तो प्रकृति हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बाप दादा का आह्वान करने का बहुत अच्छे अनुभव करें, प्रैक्टिस करें, ताकि कुछ भी बात आए तो हम बाबा को बुला सकें और बाबा तुरंत आ जाए। निर्भय बनना, साक्षी बनना, इन चीजों पे भी ध्यान देंगे तो हम सारा सेफ भी रहेंगे, अचल अड़ोल भी रहेंगे।
भाई जी, एक क्वेश्चन और आया है कि जब कोई शरीर छोड़ती है आत्मा और उसके बाद में उसको जब भोग लगाया जाता है, तो वो भोग लगाने का तरीका किस तरह से हो, उस आत्मा का आह्वान करके उस आत्मा के प्रति भोग लगे या पहले शिव बाबा के प्रति भोग लगे और फिर आगे का?
इसमें दो थालियां बनानी होती है हमें, एक बाबा के लिए एक उस आत्मा के लिए, और भोग लगाएंगे हम बाबा को और बाबा से कहेंगे उस आत्मा को भी खिला दो भोग, बाबा उसको बुलाकर उसको भोग खिला देंगे, और वो जो थाली है फिर वो खुद नहीं खानी है, वो जानवरों को खिला देंगे।
जी भाई जी, थैंक यू। अभी और क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं लेकिन समय की सीमा को देखेंगे, और भाई जी आगे भी आप इसी तरह से अमरावती से जुड़ते रहेंगे, और आखिर में दीदी आपका धन्यवाद करना चाहेंगी एक दो मिनट।
हम सभी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रश्न हम सबको पूछे हैं और बहुत सुंदर आपका जो इसका उच्चारण रहा, क्योंकि कलियुग ने ये भी बोला था कि हम सारे ही स्पीड को बुला लेते हैं, रखते प्यारो और हम देखें, तो बहुत अच्छा है सबको सवाल का जवाब दिया कि किस तरह से हमें आभार नहीं करना है, बाबा के आह्वान के साथ उस आत्मा को हमें किस तरह से मुक्ति देनी है। और भी हम सबका आपके प्रति बहुत ही दिल का प्यार है, जब भी यहाँ कोई ऐसा कार्य होता है तो आपको हम जरूर याद करते, हमारा तो जो अपने कर्म हो कर कर्मयोग की जब बात कही तो उस समय का हमारा भी अपना निजी अनुभव, आपको तो हमने दिल से श्री बाबा बात करना हमारे तो गुरु है ही, लेकिन साकार के अंदर में आप ही गुरु बनकर बहुत अच्छी कॉमेंट्रीज और शिक्षाएं जो सब सबको देते रहते हैं, उसका हम सब भी और हमने खुद ने प्रयोग करने के बाद कर्म भोग के कर्मयोग के रूप में बहुत अच्छी तरह से हम सब ने उसका और खुद ही खुद का मैंने अनुभव किया, इसलिए दिल से आपको बहुत बहुत कि आगे रोकने अगर जो बन रहा था बनाने का संकल्प थी, लेकिन आप गणेश कॉलोनी के उद्घाटन के लिए ग्राउंड में पहुंचे थे और आपके संकल्प से आपने खुली लगाई और ये भी शो समाचार में आपको सुनाना चाहती हूँ, बस इसी मास अगले मास के अंत में वो पूर्ण हो जाएगा और आपको सभी अमरावती निवासी भाई बहनों की ओर से फिर से अमरावती में साकार कदम रखने के लिए हम आपको हर विशेष विशेष क्योंकि अपने साकार